दुनिया में है ना ऐसी कई शानदार इमारतें होती हैं, बाहर से देखकर लगता है कि ये बिल्कुल बेदाग है।
हाँ बिल्कुल, एकदम परफेक्ट।
वही ना, चमकते हुए शीशे, परफेक्ट पेंट और एकदम आकर्षक डिजाइन, देखकर लगता है कि सब कुछ अपनी जगह पे एकदम सही है और इनकी नींव तो सदियों तक नहीं हिलेगी।
सही कहा।
एक ऐसी तस्वीर जो आंखों को पूरी तरह सुकून देती है। मेरा मतलब है कोई भी आसानी से विश्वास कर ले कि ये बेहद मजबूत है।
लेकिन जरा सोचिए, अगर उस इमारत की नींव को गहराई से देखा जाए, उसके बेस को परखा जाए, तो अचानक पता चले कि अंदर से दीवारें पूरी तरह खोखली हैं।
बापरे, यानी अंदर कुछ बचा ही नहीं है।
हाँ, दीमक ने पूरे ढांचे को अंदर से खा लिया है और वो इमारत बस किसी भी पल गिरने ही वाली है।
ऊपर से सब कुछ कितना ठीक दिख रहा था, पर अंदर से सब कुछ खत्म हो चुका था। एक तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा धोखा होता है।
और ये वही धोखा है जो अक्सर समाज में सच्चाई को पूरी तरह छुपा लेता है। जरूरी नहीं कि जो चीज बाहर से पूरी और खूबसूरत दिखती हो वो अंदर से भी वैसी ही मजबूत और सच्ची हो।
बिल्कुल सही बात है।
हम इंसान अक्सर बाहरी दिखावे को ही सच मान लेने की भूल कर बैठते हैं और जो असल समस्या है ना उसको नजरअंदाज कर देते हैं।
और आज हम इस गहरे विश्लेषण में जिस विषय में उतरने वाले हैं वो बिल्कुल ऐसी ही एक खोखली इमारत की कहानी है।
बहुत ही दिलचस्प होने वाला है ये।
हाँ, आज हम डॉक्टर जॉन ऑसवाल्ड के यशाया यानी आयजाया की किताब के अध्याय 8 और 59 पर किए गए उनके नोट्स पर चर्चा करेंगे,
जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली हिस्सा है इस किताब का।
एग्जैक्टली. और इस पूरे सफर का जो मुख्य लक्ष्य है ना, वो ये समझना है कि आखिर एक बाहरी धार्मिक दिखावे और सच्ची आंतरिक धार्मिकता यानी राइचसनेस के बीच इतना बड़ा टकराव क्यों पैदा होता है।
ये टकराव हमेशा से ही इंसानी फितरत का हिस्सा रहा है।
ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही एक ऐसी संरचना है जो इस पूरे विषय को देखने का नजरिया ही बदल देती है।
बिल्कुल, इस विषय की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे हटकर इस किताब के ढांचे को ध्यान से देखना होगा।
ढांचा मतलब इसकी बनावट?
हाँ, बनावट। डॉक्टर ऑसवाल्ड इस बात पर जोर देते हैं कि अध्याय 56 से लेकर 66 तक का जो हिस्सा है वो रैंडमली नहीं लिखा गया है। इसे एक कियाज़म के रूप में बुनी गई एक खास संरचना के रूप में समझाया गया है।
कियाज़म, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है।
थोड़ा सा है, पर आसान भाषा में एक कियाज़म असल में एक समानांतर सीढ़ी नुमा ढांचा होता है।
सीढ़ी नुमा यानी स्टेप्स की तरह?
हाँ, इसे इस तरह समझा जा सकता है कि इसका पहला हिस्सा आखिरी हिस्से के समान होता है और दूसरा हिस्सा दूसरे आखिरी के समान होता है, और ये सब एक ऐसी सीढ़ी की तरह ऊपर की तरफ जाते हैं जो आखिर में एक शिखर पर आकर मिलते हैं।
अच्छा, यानी एक पिरामिड की तरह है ना, जहां हर कदम ऊपर की तरफ एक चोटी की ओर इशारा कर रहा है और वो चोटी ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
सही पकड़ा आपने। और इस ढांचे की उस चोटी पर, उस एपेक्स पर मसीहा यानी मसीहा का आना और उसका काम है।
वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत तरीका है लिखने का,
है ना। ये पूरा लिटरेरी ढांचा इसलिए बनाया गया है ताकि पढ़ने वाला इस बात से बिल्कुल ना भटके कि आखिर ये सब बताया क्यों जा रहा है।
फोकस बिल्कुल क्लियर रहे।
एग्जैक्टली, ईश्वर इस दुनिया में अपनी रोशनी क्यों भेज रहा है? क्योंकि मसीहा के काम के जरिए ही ये रोशनी इस अंधेरी दुनिया तक पहुंच सकती है।
यानी कियाज़म का ढांचा याद दिलाता है कि समाज की असली समस्या, चाहे कितनी भी पेचीदा क्यों ना हो, उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ उसी चोटी पर बैठा है।
एकदम सही कहा।
तो इस खूबसूरत ढांचे को ध्यान में रखते हुए आइए उस असली समस्या पर आते हैं जो उस दौर के लोगों के साथ थी,
यानी एंशिएंट जूडियंस के साथ।
हाँ, चलिए देखते हैं उनका मुद्दा क्या था।
मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। देखने में तो ये लोग बहुत धार्मिक लग रहे थे, वो हर रोज ईश्वर को खोजने का दावा कर रहे थे।
हाँ, मंदिर जा रहे थे, नियम मान रहे थे।
वही ना, वो उसके करीब आना चाहते थे, उसके रास्ते जानना चाहते थे। तो आखिर समस्या कहाँ थी? इन सब में गलत क्या हो सकता है?
समस्या उनके दिखावे और उनकी असलियत के बीच की खाई थी।
अच्छा,
डॉक्टर ऑसवाल्ड इसे सीधे शब्दों में पाखंड या हिपोक्रेसी बताते हैं।
तो मतलब जो बाहर दिख रहा था वो असल में था नहीं? बिल्कुल, वो लोग बाहरी तौर पर तो सब कुछ वैसा ही कर रहे थे जैसा एक धार्मिक इंसान को करना चाहिए, लेकिन उनकी मानसिकता और उनका दिल वहां नहीं था। एक बहुत पुरानी कहावत है ना, टॉकिंग द टॉक बट नॉट वॉकिंग द वॉक।
यानी जुबान से तो बड़ी बड़ी बातें करना पर अपने जीवन में उन पर अमल बिल्कुल ना करना।
सही कहा। वो लोग धार्मिक कर्मकांड पूरी निष्ठा से कर रहे थे, लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी इब्रानी शब्द को समझना होगा और वो शब्द है मिशपात।
मिशपात जिसका अनुवाद अक्सर हमने न्याय या कोर्टरूम जस्टिस के रूप में देखा है, है ना?
लोग अक्सर इसे वही मानते हैं।
तो अगर उनके पास न्याय था तब फिर कमी किस चीज की थी?
यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। डॉक्टर ऑसवाल्ड समझाते हैं कि मिशपात का दायरा सिर्फ किसी अदालत के न्याय तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़ा और गहरा शब्द है।
तो इसका असल मतलब क्या निकलता है?
मिशपात का आधारिक मतलब है जीवन और अस्तित्व के लिए ईश्वर की ईश्वरीय व्यवस्था, यानी गॉड्स डिवाइन ऑर्डर।
गॉड्स डिवाइन ऑर्डर, ये तो सच में काफी बड़ा दायरा है,
है ना? इसका मतलब है कि अस्तित्व का हर पहलू, हर रिश्ता, हर लेन देन ईश्वर के उस सटीक और संतुलित आदेश के अनुरूप होना चाहिए। ये सिर्फ कुछ नियम मानने के बारे में नहीं है।
तो ये किस बारे में है?
ये दुनिया को उस तरह से देखने और जीने के बारे में है जैसा ईश्वर चाहता है।
चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। मुझे लगता है ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी ऑफिस में कोई कर्मचारी अपने काम की एक चेकलिस्ट बनाता है।
हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है।
जैसे ईमेल भेज दिया, टिक लगाया, मीटिंग अटेंड कर ली, वहाँ टिक लगाया, फाइल सबमिट कर दी और टिक लगाया। उसने हर बॉक्स पर टिक लगाया और सोचा उसका काम खत्म हो गया।
पर उस काम का असल मकसद क्या था?
वही तो, क्या उससे कंपनी को या किसी क्लाइंट को असली फायदा पहुंचा? इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। उसने सिर्फ बॉक्स टिक किए ताकि कोई उसे दोष ना दे सके।
और यहाँ पर जूडियंस भी फेल हो रहे थे।
हाँ, लोग मिशपात के नाम पर सिर्फ बॉक्स टिक कर रहे थे, प्रार्थना और मंदिर जाने के बॉक्सेस पर उसके असली रूह को छू भी नहीं रहे थे। ऐसा कौन सा पादरी होगा जो अपने चर्च में ऐसे लोगों को नहीं चाहेगा जो हर बॉक्स टिक करते हो?
कोई भी पादरी खुश हो जाएगा कि सब रेगुलर आ रहे हैं।
लेकिन ईश्वर इस चेकलिस्ट से खुश नहीं था, है ना?
बिल्कुल नहीं। ये चेकलिस्ट वाला उदाहरण स्थिति को पूरी तरह से बयान करता है। जब हम किसी रिश्ते को, चाहे वो ईश्वर के साथ हो या इंसान के साथ, सिर्फ एक चेकलिस्ट तक सीमित कर देते हैं तो वो रिश्ता एक तरह से मर जाता है।
उसमें कोई रूह नहीं बचती।
सही कहा। और इसी चेकलिस्ट वाली मानसिकता ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जहाँ ईश्वर इन अध्यायों में उनसे बिल्कुल उल्टा सवाल कर रहा है।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर उनके धार्मिक काम सिर्फ एक दिखावा थे तो आखिर लोग भूखे क्यों रह रहे थे?
भूखे? आप उपवास की बात कर रही हैं?
हाँ, मेरा मतलब है उपवास या फास्टिंग करना तो कोई आसान काम नहीं है। खुद को दुख देना, भूखा रहना, अगर वो अंदर से धार्मिक थे ही नहीं तो इतना बड़ा कष्ट किसके लिए उठा रहे थे? उनका असल इरादा क्या था?
ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और इसका जवाब इंसानी स्वभाव के एक बहुत ही स्वार्थी पहलू को सामने लाता है।
ऐसा क्या स्वार्थ था उसमें?
लोग उपवास इसलिए कर रहे थे ताकि वो ईश्वर का ध्यान खींच सके और उससे अपनी जरूरतें पूरी करवा सके।
ओह, तो वो ईश्वर को मैनिपुलेट कर रहे थे। एकदम सही।
इसे हम मैनिपुलेशन ही कह सकते हैं। उनका इरादा था डूइंग टू गेट, यानी कुछ पाने के लिए कुछ करना,
एक ट्रांजैक्शन जैसा।
हाँ, वो ईश्वर पर एहसान जता रहे थे कि देखो, हमने तुम्हारे लिए खाना छोड़ दिया, हमने खुद को इतना दुख दिया, अब बदले में तुम्हें हमारी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी।
वाह, उन्होंने तो उपवास को एक हथियार बना लिया था, एक इमोशनल ब्लैकमेल की तरह।
बिल्कुल वही। और सबसे भयानक बात तो ये थी कि जिस दिन वो उपवास कर रहे थे उसी दिन वो अपने मजदूरों का शोषण भी कर रहे थे।
ये तो सच में हैरान करने वाला है। मतलब एक तरफ आप पायस बन रहे हैं,
हाँ,
और आपस में लड़ झगड़ रहे थे, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे थे।
डॉक्टर ऑसवाल्ड इसे हिटिंग विद अ विकेड फिस्ट कहते हैं।
एक तरफ वो खाना छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरों की जिंदगी अजाब कर रहे हैं। कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है।
यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि बाइबल में उपवास का असली मकसद कभी भी ईश्वर से अपनी मांगे मनवाना रहा ही नहीं है।
तो असल मकसद था क्या?
अगर हम बाइबल की दूसरी किताबों और पिछले हिस्सों की ओर देखें, जैसे प्रायश्चित का दिन जिसे डे ऑफ अटोनमेंट कहते हैं, या योएल की किताब में, तो उपवास मुख्य रूप से पश्चाताप का प्रतीक होता है, रिपेंटेंस,
अपनी गलतियों का पछतावा।
हाँ, ये एक दुख जताने का तरीका है जब पूरा राष्ट्र या एक व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खेद व्यक्त करता है। ये इस बात का एहसास है कि हमने ईश्वर की ईश्वरीय व्यवस्था यानी मिशपात को तोड़ा है।
पर उन लोगों ने इसका पूरा मतलब ही उलट दिया। उन्होंने सोचा कि उपवास ईश्वर को कंट्रोल करने का एक रिमोट या स्विच है।
एकदम।
इस बात को क्लियर करने के लिए एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण डॉक्टर ऑसवाल्ड के नोट से उभर कर आता है। उन्होंने लिखा है, मैंने तुमसे ज्यादा चॉकलेट छोड़ी है।
हाँ, ये बहुत सटीक है।
अक्सर लोग सोचते हैं कि जिसने खुद को जितना ज्यादा कष्ट दिया वो उतना ही पवित्र हो गया, और अब ईश्वर की कृपा पर उसका सबसे बड़ा अधिकार है। ये एक कॉम्पिटिशन बन जाता है।
आई गिव अप मोर चॉकलेट देन यू डिड।
एकदम बचकानी सोच है ये।
पर यशाया तो साफ कहता है कि सच्चा उपवास तो ये है कि भिखारियों को खाना खिलाओ, मजलूमों को आजाद करो।
हाँ, दूसरों की मदद करो।
पर यहाँ मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है जो थोड़ा गहरा है।
जरूर पूछिए।
ईश्वर आखिर गरीबों और असहाय लोगों की मदद करने को इतना ज्यादा महत्व क्यों देता है? क्यों उसने अपने सोचे समझे उपवास के नियम को दूसरों की भलाई से ऐसे जोड़ दिया?
ये एक शानदार सवाल है और सच्ची धार्मिकता की जड़ यानी रूट यहीं पर है।
कैसे?
देखिए, जब कोई इंसान किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ करता है जो बराबरी का है, जैसे कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई ताकतवर इंसान, तो इसमें फायदा छुपा होता है ना?
हाँ, हमें से एक छिपी हुई आशा होती है कि वक्त आने पर वो भी वापस कुछ लौटाएगा। ये एक ट्रांजैक्शन है, गिव एंड टेक।
पर गरीबों के केस में ऐसा नहीं है।
बिल्कुल नहीं। जब एक गरीब भूखे या मजलूम इंसान की मदद की जाती है तो वो कभी वापस कुछ लौटा नहीं सकता। उनके पास लौटाने के लिए कुछ होता ही नहीं है।
तो ये बिना किसी स्वार्थ के किया गया काम हुआ।
एग्जैक्टली। और यही चीज सच्ची कृपा यानी ग्रेस को दर्शाती है। ईश्वर का पूरा स्वभाव कृपा पर आधारित है। वो मुफ्त में देता है बिना किसी आशा के।
तो जब एक इंसान अन्य लोगों के लिए अपना समय, पैसा और फायदा छोड़ता है जो कभी पेबैक नहीं कर सकते, तब वो इंसान असल में ईश्वर के स्वभाव का एक बेहतरीन आईना बन जाता है।
सही पकड़ा। यही वो असली मिशनाथ है जिसकी ईश्वर को तलाश थी और जिसे जूडियंस मिस कर रहे थे।
तो इसका सीधा सा मतलब है कि सच्ची धार्मिकता का असली टेस्ट वहां होता है जहां खुद का कोई स्वार्थ या फायदा शामिल ना हो।
एकदम साफ बात है।
लेकिन अगर इस बात को थोड़ा और खुरेदा जाए तो एक बहुत ही बुनियादी इंसानी डर और संघर्ष जन्म लेता है।
कैसा डर?
देखिए, इंसान अपनी सुरक्षा और जरूरतों को लेकर नेचुरली बहुत इनसिक्योर होता है। तो अगर कोई ईश्वर को धार्मिक कर्मकांडों से मैनिपुलेट नहीं कर सकता और उसे अपना फायदा छोड़कर गरीबों को मुफ्त में देना पड़े, तो आखिर उस इंसान की खुद की जरूरतों का क्या होगा?
हाँ, सर्वाइवल का डर।
वही ना, उसके घर में खाना कहाँ से आएगा? ये डर तो हर इंसान के अंदर बहुत गहराई तक होता है।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये संघर्ष बिल्कुल भी नया नहीं है। ये उत्पत्ति यानी जेनेसिस की कहानी के शुरुआती पन्नों में ही दिखाई देता है।
आप आदम के बाग यानी गार्डन ऑफ ईडन की बात कर रहे हैं?
हाँ, वो किस्सा याद कीजिए। सांप ने आकर इंसान के मन में सबसे बड़ा जहर क्या घोला था?
उसने कहा था कि ईश्वर तुम्हारी पूरी तरह परवाह नहीं करता।
बिल्कुल। उसने ये झूठ बोला कि ईश्वर तुमसे कुछ अच्छा छुपा रहा है, इसलिए तुम्हें अपनी जरूरतें खुद पूरी करनी होंगी। सांप ने ईश्वर की नीयत पर शक पैदा किया था
और इंसान ने उस झूठ पर विश्वास भी कर लिया,
जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी। पर फिर दूसरी तरफ अगर हम उत्पत्ति 12 में अब्राहम के जीवन को देखें तो वहाँ पूरा नजरिया उलट जाता है।
कैसे उलट जाता है?
ईश्वर अब्राहम से कहता है कि अपना देश, अपना अशियाना और अपनी पूरी सुरक्षा छोड़ दो,
जो कि किसी के लिए भी बहुत डरावना होगा।
पर अब्राहम क्या करता है? वो अपने सबसे गहरी जरूरतों को, अपने पूरे भविष्य को ईश्वर के हाथों में सौंप देता है।
उसने अपना कंट्रोल छोड़ दिया।
हाँ, वो ये मान लेता है कि ईश्वर उसकी जरूरत अपने तरीके से पूरी करेगा, उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है।
और मुझे लगता है यही वजह है कि इन अध्यायों में भविष्यवक्ता उस दिखावे वाले उपवास की तो आलोचना करते हैं, लेकिन अचानक से साबत यानी सैबत के पालन को इतना ज्यादा महत्व देने लगते हैं।
हाँ, साबत का जिक्र बहुत अहम है यहाँ।
अगर सोचा जाए तो साबत का नियम मानना उस दौर में कोई आसान बात थोड़ी थी।
हाँ।
हफ्ते में एक दिन अपना पूरा कामकाज बंद कर देने का इकोनॉमिकली क्या मतलब था उस समय?
काफी नुकसान होता था।
इसका मतलब था अपनी पूरी इनकम का 1/7 हिस्सा गवा देना। ये एक सच्चा नुकसान था, एक ऐसी कुर्बानी थी जिसमें इंसान सच में पीछे रह सकता था।
जबकि उनका मैनिपुलेशन वाला उपवास तो सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे के लिए था।
एग्जैक्टली। सबत रखने का आधार ही ये था कि चाहे आमदनी कम हो जाए पर ये भरोसा होना चाहिए कि मेरी बची हुई जरूरतें ईश्वर खुद पूरी करेगा।
एकदम सटीक तुलना की आपने।
पर मैं यहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट पेश करना चाहती हूँ।
हाँ, जरूर बताइए।
देखिए, अय्यूब यानी जोब की कहानी भी तो यहाँ लागू होती है। अगर कोई इंसान सबत इसलिए रख रहा है या आज्ञा इसलिए मान रहा है क्योंकि उसे लगता है कि बाद में ईश्वर बैंक अकाउंट भर देगा, तो क्या ये भी एक ट्रांजैक्शन नहीं हो गया?
ये बहुत अच्छा पॉइंट है।
अय्यूब का तो सब कुछ लूट गया था, फिर भी उसने भरोसा रखा। तो सच्ची धार्मिकता और इस नए ट्रांजैक्शन में हम फर्क कैसे करें?
ये काउंटर आर्ग्यूमेंट पूरी तरह से सटीक है और यहाँ हमें अय्यूब की कहानी के असली सार को ही समझना होगा।
तो इसका सार है क्या?
अय्यूब की सच्ची धार्मिकता इस बात में नहीं थी कि उसने दुख सहा ताकि बाद में उसे डबल मिल सके। उसकी धार्मिकता इस बात में थी कि उसने अपनी जरूरतों का फैसला लेने का अधिकार ही ईश्वर को सौंप दिया था।
ओह,
उसने एक्सपेक्टेशंस ही छोड़ दी थी।
हाँ, उसने खुद तय नहीं किया कि मुझे खुशी चाहिए या मुझे हेल्थ चाहिए। उसने बस ये कहा कि अगर ईश्वर दुख देना भी तय करता है तो मैं उसी को अपनी जरूरत मानकर उस पर भरोसा करूंगा।
यानी वो ईश्वर को किसी फाइनल गोल तक पहुंचने की सीढ़ी नहीं बना रहा था, चाहे वो वेल्थ हो या हेल्थ।
एग्जैक्टली,
ईश्वर खुद ही उसका गोल था।
यही आंतरिक धार्मिकता है जहां इंसान ईश्वर के आगे पूरी तरह सरेंडर कर देता है। और दुख की बात यह है कि यशया के दौर के लोग इस आंतरिक समर्पण में पूरी तरह विफल हो रहे थे, फेल हो रहे थे।
और यहाँ से कहानी एक बहुत ही डार्क टर्न लेती है,
बहुत ही भयानक टर्न। जब इंसान अपनी जरूरतों को लेकर इतना इनसिक्योर हो जाए, सच्ची धार्मिकता दिखाने में पूरी तरह विफल हो जाए और मैनिपुलेशन को ही अपना धर्म मान ले, तब समाज का क्या हाल होता है। अध्याय 59 इस असफलता का एक रूह कंपा देने वाला चित्र पेश करता है।
उसमें जो इमेजरी यूज हुई है वो सच में डरावनी है।
हाँ, उसमें कहा गया है कि उस समाज ने विषैले सांप के अंडे से हैं, यानी हैचिंग एडर्स एग्स, और मकड़ी के जाले बुने हैं। इसे थोड़ा डीपली सोचिए। मकड़ी का जाला दिखने में कितना इंट्रिकेट, कितना मेहनत से बना हुआ लगता है।
ठीक वैसे ही जैसे उनके कर्मकांड और उनकी धार्मिक प्रार्थनाएं बहुत पेचीदा और मेहनत वाली थी।
पर क्या कोई उस मकड़ी के जाले से अपने लिए कपड़ा बनाकर पहन सकता है?
बिल्कुल नहीं। उसमें कोई गर्माहट नहीं होती, कोई उपयोगिता नहीं होती।
वो अंदर से खोखला होता है। और वो सांप के अंडे, उन्हें पकाने की कोशिश की तो खाकर जहर से मर जाओगे, और अगर पैर से कुचल दिया तो उसमें से एक नया जहरीला सांप निकल आएगा जो तुम्हें दस लेगा।
बाप रे, ये तो हर तरफ से मौत का रास्ता है।
यानी उनके कर्मकांडों के नतीजे खुद उन्हीं को मार रहे थे।
इन तस्वीरों का एकमात्र संदेश ये है कि इंसानी कोशिशें पूरी तरह खोखली और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव साबित हो चुकी हैं। समाज में न्याय और शांति का वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसे इब्रानी में शलोम कहते हैं, वो पूरी तरह गायब हो चुका है।
शलोम पूरी तरह खत्म।
हाँ, लोग दिन के दोपहर के उजाले में भी अंधों की तरह दीवार टटोल रहे हैं, क्योंकि उनकी रूहानी आंखें पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। यहां तक कि ईश्वर खुद देखता है कि उनके बीच कोई ऐसा इंसान नहीं बचा जो सच्चा न्याय कर सके या जो बीज बचाव कर सके, इंटरवीन कर सके।
तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? जब इंसान पूरी तरह असफल हो गया, समझ में सिर्फ मकड़ी के जाले और जहरीले अंडे बचे, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता किसने बनाया?
यहीं पर डॉक्टर ऑज़वाल्ड इस पूरे अध्याय के सबसे आश्चर्यजनक बदलाव की तरफ इशारा करते हैं।
कैसा बदलाव?
जब ईश्वर को दिखता है कि इंसान अपने इस अंधकार से खुद कभी नहीं निकल पाएगा, तो वो खुद एक योद्धा यानी एक डिवाइन वॉरियर के रूप में मैदान में उतरता है।
एक सेकेंड, एक योद्धा पर थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने इसी किताब के अध्याय 53 यानी चैप्टर 53 में तो किसी और ही रूप को देखा था।
हाँ, आर्म ऑफ द लॉर्ड की बात कर रही हैं आप।
हाँ, वही। वहाँ ईश्वर की भुजा एक दास के रूप में थी जो दुख सहता है, जो पूरी तरह से कमजोर और दुबला पतला लगता है, और जो दुनिया का पाप उठाने के लिए खुद कुर्बान हो जाता है। तो अब अचानक से योद्धा कैसे बन गया?
यही डॉक्टर ऑज़वाल्ड का सबसे शानदार कंपैरेटिव विश्लेषण है।
अच्छा।
अध्याय 53 में मसीहा का काम था पाप के दंड यानी पेनाल्टी को उठाना, इसलिए उसने कमजोर और कष्ट सहने वाले दास का रूप लिया।
समझ गए।
लेकिन अध्याय 59 में समस्या कुछ और है। यहाँ पाप की आदत और पाप की उस ताकत की बात है जिसने समाज को पूरी तरह जकड़ लिया है।
तो उस ताकत को तोड़ने के लिए एक बड़ी ताकत चाहिए थी।
सही पकड़ा। इसलिए जो भुजा पहले कमजोर लग रही थी, वही भुजा अब डॉक्टर ऑज़वाल्ड के मजाकिया शब्दों में एक 27 इंच के बाइसेप वाले योद्धा की बन जाती है।
27 इंच का बाइसेप, क्या बात है।
हाँ, ये योद्धा आक्रामक है, ताकतवर है और बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार है।
ये तस्वीर तो सीधे किसी सुपर हीरो एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी लगती है ना, जब इंसानियत हार मान चुकी होती है, चारों तरफ अंधेरा और तबाही होती है, विलन जीत रहा होता है,
और तभी आसमान से एक योद्धा धमाकेदार एंट्री लेता है।
बिल्कुल, वो धार्मिकता का सीना बंद पहनता है यानी ब्रेस्ट प्लेट, और अपने सर पर उद्धार का टोप लगाता है यानी हेलमेट ऑफ सेल्वेशन। वैसे यहां से हमें ये भी क्लियरली समझ आ जाता है कि नए नियम में पॉल ने अपना आर्मर ऑफ गॉड का विचार आखिर कहां से उठाया था।
एकदम सही कनेक्शन जोड़ा आपने।
लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ बचा है, ये 27 इंच बाइसेप वाला योद्धा आखिर लड़ किससे रहा है? क्या वो किसी दूसरे देश की सेना जैसे बेबीलोन या रोम का नाश करने आया था?
यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं समझने में। ये योद्धा किसी बाहरी दुश्मन, किसी साम्राज्य या किसी देश की सेना से लड़ने नहीं आया।
तो फिर दुश्मन कौन है?
ये आकर सीधे उन लोगों के अपने पापों से, उनके खोखलेपन से और उनकी हेर फेर वाली धार्मिकता से लड़ रहा है। उनकी असफलता ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन थी।
ओह, तो लड़ाई अंदर की थी, बाहर की नहीं।
हाँ, क्योंकि इंसान खुद को बदलकर सच्चाई के रास्ते पर नहीं ला सका, इसलिए ईश्वर उस अंधकार को चीरते हुए आता है ताकि वो इंसान को अंदर से आंतरिक रूप से बदल सके।
पर यहाँ मैं गलतफहमी को दूर करना चाहती हूँ जो आज के दौर में काफी देखी जाती है।
बोलिए, क्या बात है?
क्या इस योद्धा के आने का मतलब ये है कि ईश्वर आकर बस इंसान पर हाथ रखता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम लोग बुरे हो, पर मैं तुम्हारी गलतियों को इग्नोर कर देता हूँ?
लोग अक्सर यही सोचते हैं।
मतलब क्या ईश्वर हमें सिर्फ जीसस कलर्ड ग्लासेस यानी जीसस के रंग वाले चश्मे पहनकर देखता है जहां हमारे पाप उसे दिखाई ही ना दें, भले ही हम कितने भी अंधकार में जी रहे हों? डॉक्टर ऑज़वाल्ड इस बारे में क्या राय रखते हैं?
डॉक्टर ऑज़वाल्ड इस विचार का बहुत ही कड़ी आलोचना के साथ खंडन करते हैं। ईश्वर किसी खोखली इमारत के ऊपर सिर्फ एक नया खूबसूरत पेंट का कोट नहीं लगाता।
पेंट लगा देने से अंदर का दीमक थोड़ी जाएगा।
वही तो, जीसस कलर्ड ग्लासेस का विचार ये मान लेता है कि ईश्वर को धोखा दिया जा सकता है, जैसा कि वो उपवास वाले लोग सोच रहे थे। पर सच्चाई ये है कि ईश्वर इस योद्धा के जरिए हमारा स्टेटस नहीं बदलता, वो हमारा अस्तित्व बदलता है।
हमारा अस्तित्व बदलता है, ये बहुत गहराई वाली बात है।
हाँ, वो हमें सच में, हकीकत में आंतरिक रूप से धार्मिक बनने के काबिल बनाता है। वो नींव की दीमक को पूरी तरह खत्म करके एक नई और मजबूत नींव रखता है,
ताकि मसीहा की रोशनी असल में उसके लोगों के जरिए इस दुनिया में चमके।
एग्जैक्टली, यही उसका पूरा प्लान था।
आइए अब इस पूरे गहरे सफर को एक जगह समेटते हैं। हमने शुरुआत की थी एक बहुत ही खोखली इमारत और चेकलिस्ट वाली धार्मिकता से,
जहाँ बस ऊपर का दिखावा था।
हाँ, जहाँ लोग पूरी मेहनत से उपवास कर रहे थे, पर उनका मकसद सिर्फ ईश्वर से अपना काम निकलवाना था, एक तरह का मैनिपुलेशन था।
और उसके बाद हमने सच्ची कृपा को देखा।
बिल्कुल, फिर हमने सच्ची कृपा का अर्थ समझा, जहां गरीबों की मदद करने में अपना कोई फायदा शामिल नहीं होता। फिर हमने उस डर का सामना किया जहां इंसान अपनी जरूरतों को ईश्वर के हाथ में सौंपने से डरता है,
और उस डर को जीतने का रास्ता साबत के पालन से होकर गुजरता है।
सही बात है। और आखिर में जब इंसान इन सब कोशिशों में पूरी तरह फेल हो जाता है और समाज में मकड़ी के जालों जैसा अंधकार फैल जाता है, तब एक 27 इंच बाइसेप वाला डिवाइन वॉरियर आकर पाप की ताकत को तोड़ता है, ताकि हमारा सच में आंतरिक बदलाव हो सके।
इस पूरे विश्लेषण को समझने के बाद इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। ईश्वर को उस सस्ते और बाहरी दिखावे की कभी जरूरत नहीं थी, उसे सच में एक बदलाव दिल चाहिए
जो अंदर से पवित्र हो।
हाँ, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी खुद की बनाई हुई धार्मिकता से दुनिया में कभी रोशनी नहीं ला सकते। इसके लिए हमें मसीहा के उस योद्धा रूप को अपने जीवन में काम करने देना होगा।
सच में ये एक ऐसा विश्लेषण है जो बाहरी चमक दमक के पीछे छुपी असलियत को पूरी तरह बेनकाब कर देता है।
मैं पूरी तरह सहमत हूँ।
और इस गहरे सफर के अंत में एक आखिरी और गहरा विचार छोड़ना बहुत जरूरी लगता है।
जरूर।
देखिए, प्राचीन काल में यहूदियों ने तो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उपवास और प्रार्थना को एक हथियार बना लिया था।
हाँ।
उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बना ली थी जहाँ उन्हें खुद को बदलना ना पड़े,
जो उनके लिए एक आसान शॉर्टकट था।
पर क्या आज के इस आधुनिक और तेजी से बढ़ते समाज में इंसान ने भी ऐसे ही नए कर्मकांड और शॉर्टकट्स नहीं बना लिए हैं?
ये बहुत बड़ा सवाल है।
चाहे वो दान देना हो, सामाजिक कार्यों यानी सोशल वर्क में दिखावा करना हो, या इंटरनेट पर अपनी एक अच्छी इमेज बनाना हो, ऐसी कितनी चीजें हैं जहां बिना किसी सच्ची कुर्बानी के और बिना अपना दिल बदले सिर्फ अपने मतलब के नतीजे पाने की कोशिश की जा रही है।
वही पुरानी आदत नए कपड़ों में।
तो क्या आधुनिक सफलताओं के पीछे भी आज वही मकड़ी के जाले तो नहीं बुने जा रहे, जो आखिर में ना तो हमें बचा सकते हैं और ना ही किसी इंसान की सच्ची भलाई कर सकते हैं? इस बारे में जरूर सोच विचार करना चाहिए।